नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध विराम को अनिश्चितकाल के लिए बढ़ाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच शांतिवार्ता जारी रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच दो सप्ताह का युद्ध विराम आज समाप्त होने वाला था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जब तक ईरान कोई साझा प्रस्ताव पेश नहीं करता, तब तक ईरान के बंदरगाहों की नाकेबंदी जारी रहेगी। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप की यह घोषणा एक तरफा मानी जा रही है। अभी यह स्पष्ट नहीं है कि ईरान और इसराइल इस पर सहमत होंगे या नहीं। ईरान से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। पश्चिम बंगाल में कल 16 राज्यों की 152 सीटों पर विधानसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान होगा। इस चरण में 1478 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। राज्य में दूसरे चरण का मतदान 29 अप्रैल को होगा। उधर तमिलनाडु में भी कल राज्य की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक ही चरण में मतदान होगा। राज्य में 5,73,43,000 से अधिक मतदाता हैं। तमिलनाडु में एक ही चरण और पश्चिम बंगाल में पहले चरण का विधानसभा चुनाव प्रचार कल समाप्त हो गया। सर्वोच्च न्यायालय आज प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। ये मामला इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपैक पर छापेमारी से जुड़ा है। ये सुनवाई उस आरोप से संबंधित है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री ने आईपैक के परिसर में चल रही ईडी की तलाशी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत सहनिर्माण, सह विकास और सह नवाचार के लिए एक खुला अवसर है। उन्होंने भारत और जर्मनी के रक्षा उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने पर बल दिया। जर्मनी की अपनी 3 दिन की यात्रा के पहले दिन जर्मन संसद की रक्षा और सुरक्षा समिति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया आज नई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रही है और तकनीकी बदलावों ने हालात को और जटिल बना दिया है। यात्रा के दौरान श्री सिंह जर्मनी के रक्षा मंत्री और अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की आज पहली बरसी है। पिछले वर्ष आज ही की तारीख को पहलगाम में आतंकवादियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी थी। इनमें अधिकतर लोग पर्यटक थे। इस जघन्य कृत्य ने पूरे देश को झकझोर दिया था और दुनिया भर की सरकारों तथा नेताओं ने इसकी कड़ी निंदा की थी। पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में भारतीय सशस्त्र बलों ने पिछले साल 6 और 7 मई की रात को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। ऑपरेशन सिंदूर को याद करते हुए भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पर एक संदेश भी साझा किया है जिसमें आतंकवादियों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा गया है कि जब मानवता की सीमाएं पार होती हैं तो जवाब निर्णायक होता है। पहलगाम हमले में शामिल आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन महादेव भी शुरू किया गया। लगातार तलाश और दबाव के बाद एक तेज और सटीक कार्रवाई में 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया था। इस कार्रवाई के साथ 28 जुलाई को हमले के दोषियों को उनके अंजाम तक पहुंचाया गया। केदारनाथ धाम के कपाट आज सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चार और विधि विधान के साथ श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोल दिए गए। बद्रीनाथ धाम के कपाट श्रद्धालुओं के लिए कल खोल दिए जाएंगे। जिला और पुलिस प्रशासन ने सुचारू और सुरक्षित तीर्थयात्रा के लिए व्यापक प्रबंध किए हैं। देश में जनगणना 2027 के पहले चरण के दौरान 26 लाख से अधिक परिवारों ने स्वगणना सुविधा का लाभ उठाया। रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार ये डिजिटल जनगणना में लोगों की बढ़ती भागीदारी का संकेत है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन जानकारी देकर लोग राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दे रहे हैं। ये सुविधा फिलहाल कई राज्यों में जारी है जबकि कुछ राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मकान सूचीकरण का काम अभी भी शुरू हो गया है। जनगणना का दूसरा चरण यानी जनसंख्या गणना अगले वर्ष फरवरी में शुरू होगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहलगाम आतंकी हमले की पहली बरसी पर पीड़ितों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि उस जघन्य और कायरतापूर्ण आतंकी हमले में जान गंवाने वाले निर्दोष लोगों की यादें देश की सामूहिक स्मृति में हमेशा अंकित रहेंगी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ितों को हमेशा याद रखा जाएगा। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत उनके परिवारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद के किसी भी रूप के आगे कभी नहीं झुकेगा और आतंकवादियों के घिनौने मंसूबे कभी सफल नहीं होंगे। महिला टी20 क्रिकेट में आज भारत का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। जोहान्सबर्ग में 5 मैचों की श्रृंखला के तीसरे मुकाबले में आज भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से दोनों टीमें आमने सामने होंगी। दक्षिण अफ्रीकी टीम पहले ही 2 मुकाबले जीत चुकी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।